नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपका। आज हम ले आए हैं आपके लिए 1 से 15 दिसंबर का अंक। मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं हूं विनीता ठाकुर।
दोस्तों, देश में सहकारिता की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है जो आजादी से पहले आर्थिक आंदोलन का अहम हिस्सा थी। साल 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय बना तो इसकी परंपरा को एक नई ऊर्जा और ताकत मिल गई। आज भारत में 8,44,000 से ज्यादा सहकारी समितियां हैं और 30 करोड़ से ज्यादा सदस्य इनसे जुड़े हैं। अब देश सहकारी तंत्र का विस्तार करके एक नया आर्थिक मॉडल बनाने के रास्ते पर चल पड़ा है जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य और देश के विकास के संकल्प को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा।
भारत में दुनिया की 1/4 से भी अधिक सहकारी समितियां हैं और लगभग 1/3 भारतीय ग्रामीण जनसंख्या सीधे तौर पर इनसे अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के लिए जुड़ी हुई है। ऐसे में दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही सहकारिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बीते कुछ वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन कर नई ऊर्जा का संचार किया है। इससे अब सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बनकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कर रहा है साकार। इसी संदर्भ में सहकार से समृद्धि इस बार हमारे अंक की आवरण कथा बनी है। श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में भारत की दो सहकारी संस्था अमूल और इफ्को को मिली बड़ी वैश्विक उपलब्धि पर देश के प्रथम केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं।
हमारे देश की दो जानी मानी कोऑपरेटिव्स अमूल और इफ्को, दोनों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम, और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। मैं तो गुजरात से आता हूं, बचपन में छोटा सा बच्चा था तब से डेयरी सेक्टर ने गांव के किसानों को और गरीबों में क्या जादुई परिवर्तन उनके जीवन स्तर में उठाने के लिए किया है उसको देखा हूं। परंतु आज श्वेत क्रांति की वाहक अमूल बनी है और 36 लाख किसान सदस्य, 18,000 ग्रामीण समितियां और 18 जिला संघों के माध्यम से देश भर में 3 करोड़ लाख लीटर दूध रोजाना कलेक्ट करने का काम अमूल करती है। मित्रों, ये बताता है कि 36 लाख किसान है जिसमें 65% से ज्यादा महिलाएं हैं और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, वो इकट्ठा होकर 100-100 रुपये की पूंजी लगाकर 90,000 करोड़ के टर्नओवर का एक इतना बड़ा कोऑपरेटिव सफलतापूर्वक इतने सालों से चला रहे हैं। ये बताता है कि हमारे देश में कोऑपरेटिव की संभावना कितने विशाल स्तर पर है।
दोस्तों, इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में भारतीय कला के नायक नंदलाल बोस, आईसीसी महिला विश्व कप चैंपियन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, दिल्ली बम विस्फोट पर पीएम मोदी की दो टूक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और परमाणु ऊर्जा पर विशेष सामग्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम और बैक कवर पर 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर विशेष सामग्री को भी समाहित किया गया है।
हिमालय की गोद में बसे भूटान और भारत के बीच का रिश्ता केवल सीमा से नहीं बल्कि संस्कृति और संवेदनाओं से भी जुड़ा है। दशकों से ये संबंध विश्वास, सहयोग और साझी समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा है। इन्हीं संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की भूटान की यात्रा पर रहे। इस दौरान दोनों देश के बीच कई महत्वपूर्ण निर्णय और समझौते हुए। यात्रा के दौरान पीएम मोदी थिम्पू में चतुर्थ डुक द्वालपो की 70वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही वैश्विक शांति महोत्सव में भी भाग लिया। भारत में पुरखों की प्रेरणा वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, ऐसे में सर्वे भवन्तु सुखिना मंत्र के माध्यम से सभी के सुखी होने की प्रार्थना दोहराई। पीएम की भूटान यात्रा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी पत्रिका में साझा की गई है।
परमाणु और नाभिकीय संयंत्र का नाम आते ही लोगों के मन में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं जागृत हो जाती हैं। लेकिन भारत में इन प्लांट्स और आसपास के क्षेत्र को विशेष मानकों के साथ सुरक्षित और संरक्षित किया गया है। रिक्टर पैमाने पर 8.6 से 9 की तीव्रता के भूकंप भी आए तो देश के परमाणु संयंत्रों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। देश के लिए महत्वपूर्ण इन संयंत्रों के विस्तार के लिए भारत सरकार नए मिशन पर काम कर रही है, तो इनकी सुरक्षा और संरक्षा का भी लगातार मूल्यांकन करती है। बीते दिनों परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री की तरफ से संसद में दिए गए एक जवाब में ये बात साफ की गई कि दुनिया में कभी भी न्यूक्लियर संरक्षा से संबंधित यदि कोई बड़ी घटना होती है तो उस हिसाब से जांच के लिए संरक्षा पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। परमाणु ऊर्जा पर विशेष रिपोर्ट पत्रिका में शामिल है।
अपनी स्थापना के बाद से बीते 25 वर्षों में उत्तराखंड ने पहाड़ की सीमाओं से आगे बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास, व्यवसाय के साथ समृद्ध अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत को भी नए आयाम दिए हैं। तभी उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि राज्य तय कर ले तो आने वाले वर्षों में ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित हो सकता है। उत्तराखंड के इतिहास में 9 नवंबर की तारीख एक लंबे और समर्पित संघर्ष के परिणाम का दिन है। उत्तराखंड के लोगों ने जो स्वप्न देखा था उससे 25 वर्ष पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरा किया था। आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर इस राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले लोग बेहद प्रसन्न होंगे।
दोस्तों, प्रदेश की विकास यात्रा को गति देने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी ने समारोह में किया। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जमरानी और सोंग बांध परियोजना देहरादून और हल्द्वानी में पेयजल की समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वर्तमान में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम प्रगति पर है और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। इन परियोजनाओं से उत्तराखंड के विकास को और गति मिलेगी। पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ 1 मेडिकल कॉलेज था जबकि आज 10 हैं। टीकाकरण कवरेज 25% से कम था लेकिन अब उत्तराखंड का लगभग हर गांव टीकाकरण कवरेज के दायरे में आता है। देवभूमि उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह की सभी जानकारियां इस पत्रिका में शामिल हैं।
दुनिया भर के विकसित देशों के आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। भारत भी उसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में भारत के आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बड़े बड़े ब्रिज, हाईवेज तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि जब ऐसी सुविधाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। लोगों को इस तरह का अनुभव कस्बा, छोटे नगर, पूरे देश में भी देखने को मिलता है। पिछले 11 वर्षों में देश में कई नए हवाई अड्डे बने और वंदे भारत ट्रेनें भी चलने लगी हैं, जिससे विकास को नए पंख लगे हैं। वाराणसी से 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी हैं।
आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम तो ये हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है।
भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं सिर्फ देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र आध्यात्मिक धारा के केंद्र हैं। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो इससे भारत की संस्कृति, उसकी आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम पूरा हो रहा है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है। बीते 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया।
अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर खेल के मैदान तक आज भारत का परचम हर तरफ लहरा रहा है। इसी परचम में एक और सुनहरा अध्याय तब जुड़ा जब देश की बेटियों ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतकर भारत के गौरव को आसमान पर पहुंचा दिया। विश्व कप विजेता की इन्हीं महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उनके जज्बे, मेहनत और साहस को सराहा।
खेल के मैदान में जब भारतीय खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना दोस्तों, तो उनके पीछे पूरा देश एक साथ खड़ा रहता है। स्टेडियम में भारत का उत्साह गूंजता है और हर जीत में देशवासियों का अभिमान बसता है। उनकी प्रेरणा से खेल अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब ये नए भारत का आंदोलन बन गए हैं। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन की इसी कड़ी में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 चैंपियन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात में कहा कि सचमुच आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है।
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। आईसीसी महिला विश्व कप चैंपियन से पीएम मोदी की बातचीत के कुछ अंश पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार अब प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं ईमेल के जरिए इस पते पर response-nis@pib.gov.in। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत।
नमस्कार।